సరస్వతి గౌర భక్త వెండకి శ్రీ రాధా కృష్ణ శ్యామ కుండ రాధా కుండ గ్రీ గోవర్ధన కీ బ్రజభూమి బృందావన ధామ కీ మాయాపుర నవద్వీప ధామ కీ పురుషోత్తమ క్షేత్ర జగన్నాథపురి ధామ కీ గంగా జమున మాయి కీ తులసీ భక్తి దేవి కీ సమవేత భక్త వృంద కీ గౌర ప్రేమానందే హరి హరి ఓ సబ్ కఠె భక్తో కి జయ హరే కృష్ణ సబ్ కఠె భక్తో కి జయ హరే కృష్ణ సబ్ కఠె భక్తో కి జయ హరే కృష్ణ శ్రీ శ్రీ గురు అన్ గౌరంగ కి గౌర ప్రేమానందే నమాం విష్ణు పదాయ కృష్ణ పృష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామితి నా నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచార నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత దేశ తారిణి హరే కృష్ణ. తో ఆప్ సబ్కా స్వాగత్ హై. ఇట్ బహుత్ సుందర్ అంతరాష్ట్ర కృష్ణ భావన అమృత సంఘ పంజాబీ భాగ్ మందిర్ మే आज के रविवार के इस कृष्ण कथा में और भगवत प्रसाद में आप सबका स्वागत है. आधा पौने घंटे तक के लिए आप लोग हमारे साथ हरि कथा में सहयोग देंगे. तो हरी कथा सुनने के लिए पहले आप सब हाथ जोड़ लीजिए और आंखें कर लीजिए बंद. जो ठाकुर जी के दरवाजे बंद हो गए उससे पहले जो दर्शन आप कर रहे थे उसको हृदय में विराजमान कीजिए और मेरे पीछे दोहराइएगा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. पहले हम कहें तो अब आप सुनिए, फिर आप सब लोग साथ में कहिए. तो पहले हम कहते हैं, आप इसको सुनेंगे लेकिन भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए. राह कृष्ण बल्लाम का ओम नमो भगवते वासुदेवाय. कृष्णाय वासुदेवाय. देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद. श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. श्री हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। कैसे लगा आपको जब भगवान के नाम का उच्चारण होता है और ये ध्वनि की कंपन जब आपके कानों के द्वारा मन को छूती हुई हृदय से होती हुई आत्मा को अगर स्पर्श कर ले तो आपको एक अलौकिक आनंद का अनुभव होगा। आपको कैसे लगता है जब आपने उच्चारण ये किया आपको कैसे कुछ महसूस हुआ आपको आनंद आ गया। ये भैया बोलता है आनंद आ गया। क्या नाम आपका? विकास। तो इस आनंद का और विकास करो बढ़ाओ इसको। हाँ तो तीन बार करने से इतना विकास हो गया तो ज्यादा करने से और ज्यादा विकास होगा ना। तो ये सत्य आपको कहते हैं कि भगवत नाम का जो उच्चारण हम करते हैं ना इसकी ध्वनि की कंपन आत्मा का भोजन है। आपको बहुत अच्छा लगता है ना भोजन प्रसाद? हाँ अच्छा लगता है ना सबसे ज्यादा प्रसाद? दिन में तीन बार खा लेते हैं ना। ब्रह्मा जी ने जब पहले सृष्टि की उत्पत्ति की ना तो पशु पक्षी ये आए ब्रह्मा जी को कहा हमको भूख लगी है क्या करें? बोला जहां जाओ जो मिले वो खाओ। तब मानव खड़ा था उसने पूछा कि भूख तो हमको भी मिली है लगी है ब्रह्मा जी पिता हम क्या करें? बोला दो टाइम केवल खाओ। बोला इनको बोला जो चाहे वो खाओ हमको दो टाइम। बोला तुम मानव हो थोड़ी सी तपस्या कर लेना तुमको भगवान को प्राप्त करना है। लेकिन हमने क्या किया हमने दो टाइम खाना छोड़ दिया। अब हम भी जब आए जो आए जहां आए खा रहे हैं तो कौन सी ब्रह्मा जी की बात मान रहे हैं जो किसको कहा था उसने? मैं नहीं कह रहा हूं आप कह रहे हैं। तो बात कर रहे थे खाने में बहुत सुख मिलता है ना। अब आदमी भूखा हो खाना नहीं मिला हो भोजन प्रसाद कुछ नहीं मिला हो तो भोजन को देखने से भी सुख मिलता है हाथ लगाने से और अच्छा लगता है मुंह में डालने से मजा आ जाता है और पेट भर के खाने से कहते ओह बहुत अच्छा ऐसे ना। ठीक इस प्रकार से कई जन्मों की भूख है हमको मतलब आत्मा को जो हमारी असली पहचान है उसको जब थोड़ा सा अल्प ही किसी साधु के संग में भगवान का नाम सुनने को मिलता है तो अंदर से थोड़ा सा आनंद आने लगता है बिल्कुल आनंद आने लगता है। लेकिन वो आत्मा तक शब्द ध्वनि पहुंचनी चाहिए वो ध्वनि आत्मा तक पहुंचनी चाहिए कानों के द्वारा उसको अंदर जाने के लिए थोड़ी सी उत्सुकता होनी चाहिए इच्छा होनी चाहिए कि ये अंदर जाए। ये भाव हमारा होगा तो आना और निश्चित रूप से छोटे बच्चे से पूछो वो भी कहेगा ऐसे जब मैंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय बड़ा आनंद आया क्योंकि भगवान का आपके साथ संबंध होता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं हमारा भगवान के साथ संबंध होता है। तो ये तो आज के इस जो हमने उच्चारण किया इसके ऊपर चर्चा की। आज विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो विषय है भगवान श्री कृष्ण सारी सृष्टि का पालन पोषण तो करते ही है। भगवद गीता का ये श्लोक के दो शब्द पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं इस पूरे जगत का जो भी प्राणी है मानव से लेके कीट पतंग तक और देवता से ऊपर लेके गंधर्व और रक्ष याक्षस तक सबका मैं पालन पोषण करता हूं। लेकिन फिर कहते हैं मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूं, सबका पालन पोषण करता हूं, लेकिन अपने भक्तों का भक्तों से बहुत प्रेम करता हूं, और उस प्रेम के कारण मैं उनकी देखभाल बहुत निकट से लेता हूं। अंग्रेजी में इस विषय का नाम है कृष्ण लव एंड केयर फॉर हिज डिवोटीज। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से बहुत अति प्रेम करते हैं, और फिर जिससे हम प्रेम करते हैं उसको हम सुखी देखना चाहते हैं, उसका दुख हम दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा भक्तों को सुख प्रदान करने वाला और दुख निवारण करने वाला है, एक ही शब्द में दोनों चीजें हैं। तो इस विषय के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इस विषय के ऊपर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आप सब भक्त हैं, तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमसे भगवान श्री कृष्ण कितना प्रेम करता है। भक्त है तब तो भगवान के शरण में आए, भगवान के मंदिर में आने वाला भक्त है तब भगवान के पास आया है। तो भक्त है तो भगवान हमसे कितना, 10वें अध्याय भगवद गीता का पहला श्लोक है, जो भक्त है उनको मालूम होगा। भगवान ने उस श्लोक को शुरू कैसे किया, भूय एव महाबाहो श्रणो मे परमम वचः। भूय, भूय को कहते दोबारा, भूय एव महाबाहो, हे बड़ी भुजाओं वाला अर्जुन दोबारा सुनो। आप लोग अपने बच्चों को जब घर में कोई काम होता है कितने बार समझाने का प्रयास करते हैं, एक बार सुन लो, अरे दोबारा सुनो, ठीक तरह सुना कि नहीं सुना। किसको आप दोबारा सुनाने का प्रयास करते हो, जिससे आप बहुत इसको चाहते हो। भगवान कहते हैं भूय एव महाबाहो, हे महाबाहो दोबारा सुनो। भाई क्या सुनो, बोला परमम वचः, मेरे परम वचन सुनो। अभी तो बोला है आपने, दोबारा क्यों बोल रहे हो। माना अर्जुन ने ऐसे कहा कि अभी तो आपने कहा है, अब दोबारा क्यों मुझे समझा रहे हैं। तो भगवान बहुत बड़ा हृदय द्रवित हुआ और भगवान ने शब्द क्या कहा, प्रियामाणाय, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, प्रियामाणाय, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। बोला आप मुझसे प्रेम करते तो अच्छी बात है, प्रेम करो। तो प्रेम का अर्थ क्या होता है, प्रेम कर, जो प्रेम करता है वो क्या करना चाहता है। तब कहते तब हित कामया, तेरे हित की मुझे को कामना है, मैं ये कामना करता हूं कि तेरा हित हो, तेरा भला हो, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं कहता हूं तुम दोबारा मुझसे सुनो। भगवद गीता के विषय में भगवान कहते हैं दोबारा सुनो, एक बार और सुन लो। ये आप अपने जीवन में देख लो कि आप कितना, जिससे प्रेम करते हो उसको एक चीज कितनी बार समझाने का प्रयास करते हो, क्यों उसका हित चाहते हो, उसका भला चाहते हो। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो और मैं तेरा हित चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोबारा मेरी बात को सुन लो। और अर्जुन ने दोबारा भगवान की बात को सुना और तब भगवान ने कह दिया, आगे चलते भगवान कहने लगे, पहले जैसे साधारण लोग होते हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देखो मैं तो आपको ये दोबारा सुना रहा हूं। क्या सुना रहे भगवान, के तो ये आपका कर्तव्य कर्म जो क्षत्रिय का है, युद्ध का है, ये आपको युद्ध को आपको कर लेना चाहिए, सबको इकट्ठा किया यहां आ गए हो। तो अर्जुन ये तो यही दोबारा बात आपको कहनी है कि युद्ध कर लो, हाँ यही सुना है, इसमें मेरा हित है, ऐसा ही कहना चाह रहे हो क्या। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम अगर समझते हो कि तुम युद्ध नहीं कर रहे हो और मैं कह रहा हूं तुम युद्ध करो और तुम नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा स्वभाव तुमसे ये युद्ध दोबारा कराएगा। तुम्हारा स्वभाव तुमसे ये काम कराएगा। तुम स्वभाव से बच नहीं सकते। अभी तो तुम मेरे सामने साथ खड़े हो, अभी थोड़ी देर वहां से दुर्योधन आके तुमको कह देना, हे कहां है अर्जुन, कहां गया, तो तुम एकदम तीर उठा लोगे। तुम्हारे को कोई बुरा कहेगा तो तुम उसको सहन नहीं कर पाओगे। तेरा स्वभाव है, तुम चुप नहीं कर सकते हो। स्वभाव आदमी का जाता नहीं है, मालूम है? आपने एक कभी सुनी है एक बात, कई लोग आप बैठे ना कहेंगे सत्संग में गए थे, भगवान का दर्शन किया, सत्संग में बड़ा अच्छा लगा, अच्छा लगा, से मंदिर में ही बैठे रहे, आनंद मिलेगा। लेकिन सत्संग पूरा हुआ, प्रसाद खाया, फिर तो सत्संग वाली बातें सारी भूल गई, फिर तो दुनिया वापस याद आ गई। ऐसे आपके दिमाग में कई बार प्रश्न आता है कि नहीं आता है? क्यों? इसलिए कि दुनिया के साथ हमारा संबंध कई जन्मों का है, वो पुरानी आदत हो गई है, उसको छोड़ने में बहुत बड़ी तकलीफ होती है, वो इतनी आसानी से नहीं छूटती। उदाहरण देते हैं, आदत छूटती नहीं है। समझाने के लिए, एक सुनार था, सुनार का काम करता था, सुनार समझते ना, सोने के जेवर बनाता था, साधु बन गया, साधुओं के संग में आया, भक्तों के संग में बैठा, कीर्तन करने लगा, भगत बन गया। लेकिन पुराना सुनार तो था, कहीं भिक्षा लेने गया, किसी ने रोटी दी, ऐसे उठाया, 10-15 ग्राम से ज्यादा नहीं होगी। फिर उठा के उसको देखता है, इसमें कुछ मिक्स है, फिक्स नहीं है ये, ये आटे में कुछ मिक्स है। दिमाग था उसका कि कितना तोल का होगा और इसमें क्या मिला हुआ है, वो उसके दिमाग से नहीं जा रहा था। साधु बन गया तो रोटी को तोल रहा था हाथ में, और उसके अंदर मिक्स चल रहा, कुछ इसमें केवल गेहूं का नहीं हो सकता है, इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स है, ज्वार वार किसी ने किया है मिक्स, तो उसको वो दिखाई देता है। तो ये आदत जो होती है वो नहीं जाती, और कई जन्मों की हमारी ये आदत पड़ी हुई है। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आप कैसे कहते हैं कि मैं लड़ाई करूंगा, मैं नहीं करना चाहता। बोला, मैं जानता हूं तुम ये करोगे। बोलो, आपको कैसे मालूम? तब 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, मैं सारे प्राणियों का मालिक हूं और सबकी दिल में बैठा हुआ हूं। तेरे दिल में क्या है मैं जानता हूं, तुमको मालूम हो ना हो, मैं जानता हूं क्योंकि मैं तेरे दिल में बैठा हूं। भ्रामयम यंत्र रूढ़ानी मायया, और ये तेरा शरीर तो गाड़ी है, इसको मैं चला रहा हूं जैसे गाड़ी को कोई चलाता है ऐसे, तो मैं तो तेरे हृदय में बैठा हुआ, मुझे मालूम है तुम ये करोगे। तुम कह रहे हो नहीं करूंगा, लेकिन तुम ये करोगे मुझे मालूम है। अब भगवान हमारे हृदय में क्यों बैठे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कि हमने तो भगवान को बुला दिया, हमने तो उसकी याद भी नहीं हमको आती है, लेकिन वो फिर भी हमारे हृदय में बैठा हुआ है, क्यों? किसी जन्म में वो हमारा साथ नहीं छोड़ता, कभी भी हमारे को उसने अकेला नहीं छोड़ा है, क्यों? सुहृद सर्वभूतानाम, सुहृद, हृदय समझे, हृदय तो दिल को कहते हैं ना, सो का मतलब अपना दिल, क्योंकि वो हमको अपना दिलबर दोस्त मानता है, दिलबर दोस्त। सुहृद का मतलब है जो अपने बराबर का मित्र हमको मानता है, और मित्र सुहृद मित्र से बहुत ऊपर की स्थिति होती है। संसार में साधारण दोस्ती होती है ना, मित्रता होती है, सखा होता है ना, आप मेरे काम आओगे मैं आपके काम आऊंगा, ऐसे ना, अंग्रेजी में यही कहते हैं ना मित्रता को, आप मेरे काम आओ मैं आपके काम आऊंगा, आप नहीं काम आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। और रिश्तेदारी होती है, तुम हमारे घर आओगे हम तुम्हारे घर आएंगे, तुम नहीं आओगे हम भी नहीं आएंगे। लेकिन इससे ऊपर सुहृद होता है, उसका अर्थ है तुम आओ या ना आओ, तुम दो या ना दो, लेकिन मैं तुमको सुखी देखना चाहता। सुहृद का मतलब जिससे हम प्यार करते हैं उसको सुखी देखना चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए लोट में। इसका छोटा नमूना इस संसार के अंदर मां है, छोटे बच्चे को सुखी देखना चाहती है, साफ देखना चाहती है, उसको प्रेम से, इतना प्रेम होता है उसको कि उसको हर प्रकार से सुखी देखना चाहती है, इसको सुहृद होती है। माता सुहृद है, गुरु सुहृद होता है अपने शिष्य को। जैसे बालक को आप क्या चाहते हैं, अपने बच्चे को आप क्या चाहते हैं, पहले तो बहुत अच्छा लगे, साफ हो, और फिर पढ़े लिखे अच्छे किसी पद के ऊपर हो, अपना सुखी जीवन बिताए, यही मन का भाव है ना। हर हर माँ बाप यही चाहता है ना अपने बच्चे के लिए। समाज को हम अच्छा बच्चा दें, एक अच्छा नागरिक दें देश को, जो भले भाव से ऐसे जाएगा। तो गुरु ऐसे चाहते हैं कि मेरे शिष्य को इतना सुंदर, इतना साफ, इतना पवित्र बनाऊं और इतना ये दूसरों को सुख दे भगवान के, इसको मैं भगवान को अर्पण करूं। तो उसको वो सुखी देखना चाहता है। सुख कहाँ है ये वो जानता है, हम नहीं जानते हैं सुख कहाँ है। सुख कहाँ है ये हम नहीं जानते हैं। हम समझते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे सुखी हो जाएगा, जब तक कि हमने ये सब किया और हम सुखी नहीं हुए ये हमें मालूम है। कभी इसके ऊपर सोचा है, जो हमने किया, पढ़े लिखे, दुकान खोला, फैक्ट्री खोली, कारोबार किया, शादी की, बच्चे ये वो, फिर भी हम सुखी नहीं है और हम चाहते हैं यही काम दोबारा इन बच्चों से कराएंगे और ये सुखी हो जाएंगे। ऐसे लगता है कि नहीं लगता है? ये हम एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसको कहते हैं फ्यूटाइल एक्सरसाइज। हम एक एक, एक वही चीज कर रहे हैं जिससे मालूम है कि नहीं हुआ सुखम। हम एक मेडिकल कॉलेज में गए थे, डॉक्टरों को पूछा, भाई आप डॉक्टरी क्यों पढ़ रहे हो? तो जवाब क्या देंगे? भाई लोगों का दुख दूर करना चाहते हैं, जिनको पीड़ा है दुख दूर करेंगे, यही ना, जो तकलीफ है, दुख है, दर्द है, बीमारी है, वो दूर करेंगे। इसका अर्थ क्या है कि आप उनको सुख देना चाहते हैं? हाँ, दुख दूर होगा तो सुख होगा ना। फिर हमने एक प्रश्न पूछा, क्या आप सुखी हो? बोला नहीं, बहुत टेंशन है। फिर अरे तू सुखी नहीं तो दूसरे को सुख कहां से देगा? अभी तुम्हारे पास है नहीं सुख, तो तुम कहां से देगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि तुम्हारे पास सुख नहीं है तो कहां से दोगे, तुम्हारे पास प्यार नहीं है तो कहां से दोगे। भगवान तो प्रेम की मूर्ति है, कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है, रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। उनके पास प्रेम है, आनंद है, और उनके पास जाओगे तो प्रेम और आनंद ही मिलेगा, क्योंकि वही है बांटने के लिए, और तो कुछ है ही नहीं। तभी तो कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। तो बात क्या कर रहे थे? सौहृद। संसार में माता गुरुजन ये सौहृद होते हैं, और भगवान हमारे सौहृद हैं, इसलिए हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो अर्जुन ने कहा, अच्छा आप हमारे हृदय में बैठे हैं, आप हमारे बहुत सौहृद हैं। तब भगवान ने कहा, ये तो इसमें बड़ा राजी हो गया, जैसे बहुत से लोग राजी हो जाते हैं भगवान हमारे दिल में बैठा है। भाई आपका दोस्त इस दुनिया के अंदर, आपका कोई मित्र बड़ा मिनिस्टर हो तो बड़े खुश हो जाओगे ना। हमारा वो मिनिस्टर हमारा बहुत बड़ा मित्र है, घनिष्ठ मित्र है। प्रधानमंत्री मेरा बहुत बड़ा मित्र है, तो फिर तो और मजा आ जाएगा ना। लेकिन जिसको ये मालूम है कि भगवान हमारे हृदय में बैठे, हमारे बहुत बड़े मित्र है, उसको कितना आनंद आना चाहिए। ये दुनिया की दृष्टि से, और ये दुनिया वाले जिनको हम मित्र मानते हैं, प्रधानमंत्री से लेके बड़े से बड़े शासक तक, वो हमारी रक्षा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तेरी रक्षा की जिम्मेवारी मैं उठाता हूं, दायित्व मैं उठाता हूं, मैं उठाता हूं दायित्व तुम्हारा, तुम चिंता मत करो। तो मैं क्या करूं अर्जुन, अगर पूछा, बोला तुम चिंतन करो, तुम क्या करो, तुम चिंतन करो, मैं चिंता करूंगा, तुम चिंतन करो। भगवान चिंता करेंगे, आप भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान चिंता करेंगे, और आप चिंतन नहीं करोगे तो बाकी बचेगा आपके क्या भाग्य में, चिंता। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनहा पर्युपासते, अनन्यास चिंतयन्तो माम। भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से, अनन्य का अर्थ पता है क्या होता है? न अन्य, और कोई नहीं, अकेले मुझको, जो मुझ अकेले का चिंतन करता है, मुझसे प्रेम करता है। पर्युपासते, उपासते, ये शब्द सुना है उपासते? उप मतलब निकट बैठ के, निकट आके बैठे। उपासना करना पता किसको कहते हैं? भगवान की उपासना करना, पूजा करते हैं ना, तो भगवान की पूजा कहां करेंगे? पास जाके बैठेंगे तब ऐसे आरती घूमेंगी ना, ऐसे तो नहीं है मंदिर वो इधर है और आप उधर आर्थिक में, ऐसे तो नहीं होगा। नकर जाओगे तब होगा ना। उपासना का मतलब भगवान के सामने बैठना, उप मतलब ऊपर जाए। लेकिन परियोपास्ते बोला, उपास्ते नहीं बोला। परियोपास्ते क्यों बोला, उपास्ते क्यों नहीं बोला? उपास्ते का मतलब है आए भगवान को, अगरबत्ती चढ़ाई, चले गए। परियोपास्ते का मतलब है भगवान को प्राप्ति करने की, प्राप्त करने के लिए उपासना करने की। यहीं बैठे हैं, आपको छोड़ के जाएंगे नहीं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। परिप्रश्नेन और प्रश्नेन में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान कैसे प्राप्त हो, ये प्रश्न जब आता है चौथे अध्याय भगवद गीता में, तब भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक कहते हैं, तद विधि, इसकी विधि ये है। क्या विधि है? बोला प्रणिपातेन। प्रणिपातेन का अर्थ क्या है? ये जो दान की पेटी है ना भगवान के सामने, इसका नाम है संस्कृत में प्रणामी। प्रणामी का मतलब जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो फिर उसमें दान डालना है। प्रणाम करके उसमें दान डालते हैं, इसलिए इसका नाम है प्रणामी। और प्रणिपातेन का मतलब है भगवान को प्रणाम करो, उसको प्रणाम करो जिससे ज्ञान प्राप्त करना, उसको प्रणाम करो। तो प्रणाम में बोल देते हैं ना, फिर प्रणिपातेन क्यों बोला? पाते का मतलब होता है वैसे, पतन का मतलब नीचे गिरना, जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके उधर ही चरणों में बैठ जाओ। प्रायः हम लोग आते हैं किसी साधु महात्मा को प्रणाम करते हैं, महाराज आशीर्वाद दो, फिर हम चले गए अपना दुनियादारी में। लेकिन नहीं नहीं उधर बैठ जाओ, जाओ मत, प्रणाम करके उधर ही बैठो, बैठ जाओ। क्या करें बैठ के? परिप्रश्नेन। प्रश्नेन का मतलब प्रश्न पूछो। लेकिन परिप्रश्नेन क्यों बोल दिया? प्रश्नेन का मतलब ये कुछ भी पूछो, परिप्रश्न का मतलब परे के प्रश्न पूछो, भगवत प्राप्ति के प्रश्न पूछो उससे। संसार के प्रश्न मत पूछो, हमारा दुकान कैसे चलेगा, हमारा मकान कैसे बनेगा, हमारी शादी कैसे होगी, विवाह कैसे होगा, ये मत पूछो, ये तो कहीं और काम करो। उधर जाते हो साधु के पास तो परिप्रश्नेन, ट्रांसेंडेंटल इंक्वायरीज, परिप्रश्नेन, परे के आध्यात्मिकता, भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम के प्रश्न पूछो। फिर क्या करें? सेवया। सेवया का अर्थ क्या होता है? जो उत्तर दे उसका सेवन करो, जो उसने कहा वो आप करो। क्या हो गया? रॉन्ग पार्किंग। ये गाड़ी नंबर 2486 सेंट्रो किसी की खड़ी है, कहीं गलत जगह पे खड़ी है, शायद दूसरों के लिए रास्ता नहीं होगा जाने का। ये नंबर गाड़ी का, हाँ, दिल्ली का नंबर 2486, जिसकी हो उसको सही जगह पे पार्क कर दो। चला गया भैया कोई? चले गए? हमारी गाड़ी भी गलत जगह पे पार्क हो गई है इस दुनिया में। और ये जो मंदिर बनाए हैं ना, इसी अनाउंसमेंट के लिए बनाए कि तुम्हारी गाड़ी गलत पार्क है, भगवान के घर जाओ, उधर तुम्हारी, यहाँ तुम्हारा जगह नहीं सही, रॉन्ग पार्किंग में खड़े। ये सच है, ये पार्किंग रॉन्ग है। और ये मंदिर बने हैं अनाउंसमेंट करने के लिए कि रॉन्ग पार्किंग में जो है वो अपनी सही जगह पे गाड़ी को खड़ी करे, अपने सही स्थान के ऊपर। ये गाड़ी शरीर को कहते हैं, ये गाड़ी शरीर को गाड़ी कहते हैं, ये रॉन्ग पार्किंग की हुई है, इसको सही पार्क करो। हरे कृष्णा। तो बात क्या कर रहे थे, जब ये भगवत प्रेम की कथा सीखनी है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, प्रेम करेंगे, तो इसके लिए उन लोगों के संग में जाकर बैठो, प्रणाम करके, जो भगवान के संरक्षण में पहले है, और उनसे भगवान के प्रेम प्राप्त करने के प्रश्न पूछो, और जो उत्तर दे उसको जीवन में सेवन करो। प्रणाम बहुत करने आते हैं, सुबह शाम हम रोड पे जाते हैं तो हजार लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन एक भी खड़ा होकर ये नहीं पूछते हैं प्रभु जी भगवान से कैसे प्रेम हमारा हो, कोई रास्ता आपको पता है, नहीं पूछते। तो प्रणाम करते हैं, पहले तो खड़े ही नहीं होते हैं, और खड़े भी हो गए तो प्रश्न कोई और ही पूछ लेते हैं। तो भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं तो आपके हृदय में बैठा हूं परमात्मा के रूप में। अच्छा, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं। तब थोड़ा सा भगवान अर्जुन को एग्जामिन करने के लिए कहा तमेव शरणम गच्छ सर्व भावे न भारत। वो परमात्मा जो तेरे हृदय है उसके शरण में जाओ। परमात्मा का शरण में जाओ, ये तुम्हारे हृदय में बैठा है परमात्मा, उसके शरण में जाओ। बोला परमात्मा बोलेगा मुझसे, मैं कैसे मानूं कि ये परमात्मा बोल रहा है कि मेरा मन बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आएगा। परमात्मा सबके हृदय में बैठा है, वो कुछ हमको कहना चाह रहा है, लेकिन उससे ज्यादा शोर हमारे मन का इतना है कि उसका आवाज उसके नीचे दब जाता है। कभी कोई भी काम हम करते हैं अंदर से हमारा कॉन्शियंस जो है, हमारा परमात्मा जो चैत्य गुरु है, वो कहता है ये ठीक नहीं है। लेकिन हमारे पुराने आदतें ऐसी हैं, हमारा मन कहता है चुप कर, तुम जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है। सबको ये अनुभव है इस चीज का, कई बार जीवन में हमारे ये जीते ये घटनाएं घटती हैं। जैसे अपन यहां कई जगहें ऐसी हैं जहां सत्संग करते हैं, वो ट्रेन स्टेशन के पास मंदिर है, तो कोई ट्रेन जाती है एकदम, हम कितना जोर से बोले कोई नहीं सुन सकता है, उसका आवाज ज्यादा हो। कहीं शादी की बैंड पार्टी यहां से जाए, हम कितना यहां बोलने का प्रयास करें आप सुन नहीं पाएंगे, क्यों? उसका आवाज इससे ज्यादा जोर। तो हमारे मन के अंदर इतना ज्यादा बैंड बाजा बज रहा है कि भगवान की मधुर मुरली का आवाज सुनने में नहीं आता है। आपने कभी देखा है अचानक लाइट चली जाती है तो घर में लगी हुई घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देती है, टिक टिक भी सुनाई देती है, लेकिन वो रोज होती है लेकिन हम सुनते नहीं है। ऐसे भगवान सबके हृदय में, उसके शरण में। लेकिन अर्जुन बड़ा बुद्धिमान था, इस शरणागति से अर्जुन प्रसन्न नहीं हुआ। यह तो आपको मालूम है कि भगवान ने अर्जुन की रक्षा करने के लिए अर्जुन के रथ की बागडोर संभाल ली, लेकिन क्यों संभाली? सबका घोड़ा क्यों नहीं हांकता भगवान, सबकी क्यों नहीं हांकता गाड़ी, सबकी क्यों नहीं चलाता? आपके घर में ड्राइवर रखे हो गए, कभी आया भगवान ने बोला कि चलो मैं आपका ड्राइवर, आप बैठ जाओ पीछे, बोला है कभी आके? नहीं। क्यों? अर्जुन की शरणागति पहली देख लो, पहली अर्जुन की शरणागति भक्त बनने के लिए। जब द्वार का अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे भगवान श्री कृष्ण से सहायता लेने के लिए, दुर्योधन पहले पहुंचा था, बड़े सोफे के ऊपर बैठ गया था भगवान के श्रांडे के पास, भगवान आंखें बंद करके सोए हुए थे, अर्जुन को देख के आंखें खोल के करेंगे भी क्या, आंखें बंद ही करना जरूरी था ना? भगवान आंखें बंद करते हैं जब कोई अहंकारी व्यक्ति होता है, तो भगवान अपने आप आंखें बंद कर देते हैं ताकि इसको जो चाहे वो कर ले। जब अर्जुन अंदर आया तो चरणों के पास बैठा, हाँ भगवान ने आंखें खोली और अर्जुन को देखा, बोला पार्थ आप कैसे? दुर्योधन बोला मैं यहां बैठा हूं द्वारकाधीश। भगवान ने ऐसे करके देखा टेढ़ी आंख से, ओ युवराज जी आप भी पधारे हैं। भगवान ने टेढ़ी आंख से देखा, उसी दिन महाभारत का फैसला हो गया था। तो टेढ़ी आंख से देखा। कैसे पधारे? बोले हमको आपकी सहायता की आवश्यकता है, युद्ध होने वाला है, अनिवार्य युद्ध है। अच्छा तो क्या चाहिए? सेना चाहिए, सहायता चाहिए। भगवान ने कहा बहुत अच्छा, अर्जुन आप कैसे आए? सहायता तो मैं भी मांगने आया हूं। ठीक है, हमारा निर्णय यह है। भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे, एक तरफ मेरी चतुरंगनी सेना कृतवर्मा सेनापति के साथ, एक तरफ मैं अकेला और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन दुर्योधन अर्जुन तुमसे छोटा है और पहले मैंने उसको देखा है, इसलिए पहले चुनेगा अर्जुन। अब दुर्योधन बोलता है तो बड़ा मुझसे धोखा हो गया, पहले मैं आया और पहले चुनेगा वो, ये ठीक नहीं है। अर्जुन ने सोचा नहीं कि मैं सोच के बताता, ऐसे नहीं कहा, बोला मुझे कृष्ण आप चाहिए। दुर्योधन ने बोला ठीक है ऐसे ना भेज देना, मैं चलता हूँ। दुर्योधन ने बोला अच्छा हुआ यही ग्वाले को समझ में नहीं आया, नहीं तो मैं इसको ले जाके क्या करता ग्वाले को, ये तो अकेला क्या करेगा, हाथ में कुछ अस्त्र जस्त्र भी नहीं उठाएगा तो सेना में इसको मैं क्या करूंगा। लेकिन अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण को, नहीं, कृष्ण पूछा आपने सेना छोड़ के मुझे क्यों लिया, माने आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो सारी सेनाएं बेकार हैं। ये अर्जुन की पहली शरणागति, उसने चुना भगवान को। अर्जुन ने भगवान को ले लिया और दुर्योधन ने भगवान से ले लिया। ये को और से में बहुत बड़ा अंतर है। जो भगवान को ले लेता है भगवान उसके रास्ते को हांकते हैं, जो भगवान से ले लेता है भगवान उसको देखते रहते हैं, क्या करें, कितने दिन चलाएगा, सब समाप्त हो जाएगा फिर वापस आएगा। तो भगवान को लेना सीखना है, भगवान चाहिए, भगवान से तो सब कुछ पहले से ही मिला हुआ है। ये पहली अर्जुन की शरणागति है। और दूसरी शरणागति अर्जुन की भगवत गीता में जब अर्जुन स्वयं कहते हैं शिष्यस्ते अहम्, मैं आपका शिष्य हूं, इसमें एक शब्द बोलता है कार्पण्य दोष, मेरे ऊपर कृपणता का दोष आ गया। और शरणागति के छह लक्षण जो हैं उसमें एक लक्षण है कृपणता। कृपण का मतलब क्या है, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना बड़ा वीर क्षत्रिय अर्जुन हूं, गांडीवधारी हूं, लेकिन आज मैं लड़ने से इनकार कर रहा हूं तो मैं कृपण हो गया ना, धन मेरे पास बहुत है लेकिन एक पैसा भी खर्चने को तैयार नहीं हूं, कृपण हूं मैं। कृपण शरणागति का, कृपणता छठ विधि शरणागति, कृष्ण विश्व, ये विश्वास है कि भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, ये शरणागति का एक लक्षण है छह लक्षणों में। और एक लक्षण है कृपणता, कि वो हमारे पास कुछ नहीं है सब कुछ उसका है, कृपण का मतलब मैं कुछ भी नहीं है सब कुछ तू है। ये दूसरी शरणागति अर्जुन की, मैं शरण आपका शरण ले रहा हूं, मैं आपका शिष्य बन रहा हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। अब भगवान ने कहा तमेव शरणम, पहले कहा बुद्धो शरणम गच्छ, बुद्धि की शरण लो, बोला हमारी बुद्धि कहां हमारे काम आएगी, हमारी बुद्धि को हमको समझ में नहीं आती, तो बोला बुद्धि की नहीं शरण लेनी है तो परमात्मा की शरण लो जो तुम्हारे हृदय में। अर्जुन संतुष्ट नहीं हुआ, तब भगवान ने भगवत गीता के अंतिम में कह दिया माम एकम शरणम वर्ज, मेरे अकेले की शरण ले लो, अनन्या, और अन्य और किसी की नहीं, केवल मेरी और किसी की नहीं, न अन्य, माम एकम शरणम व्रज, मेरा अकेले की शरण ले लो, सबको छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम, पहले सर्वधर्मान परित्यज बोला है। और जब ऐसा शरण अर्जुन ने कहा हां ठीक है मैं आपकी शरण ले रहा हूं, कर्ष्य तव वचनम, अब जो आप कहोगे मैं वो करूंगा, तब भगवान ने बागडोर संभाल ली और हर मुश्किल से अर्जुन को पार किया। युद्ध तो पूरा हो गया, रात को सोए हुए पांडवों के पांच बच्चों को अश्वत्थामा मार गया, द्रौपदी चरोने लगी, अर्जुन अश्वत्थामा का सर ला के दूंगा ये वचन करके निकला, अब तो युद्ध खत्म हो गया था ना। लेकिन अर्जुन निकलने को तैयार हुआ, भगवान श्री कृष्ण रथ चलाने के लिए फिर तैयार हो गए और रथ चला के जब जा रहे हैं अश्वत्थामा के घोड़े थकने लगे, अश्वत्थामा डरने लगा कि अब तो अर्जुन मारेगा, तो उसने बोला एक ही रास्ता है, इसको मैं मारूंगा तो मेरे को यह कहां से मारेगा, मुझे इसको मारना चाहिए। और उसके पास आखिरी हथियार ब्रह्मास्त्र था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र कृष्ण अर्जुन की तरफ फेंका और अर्जुन ने उस अस्त्र को देखा, तब अर्जुन ने एकदम कहा कृष्ण कृष्ण महायोगी भक्त भक्ता नाम अभयंकर, हे कृष्ण भक्तों को आप ही अभयंकर भय से नाश करने वाले, आप भय मुक्त करने वाले, अब मैं भयभीत हूं। फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ये शब्द कहे दो, भक्तानाम अभयंकर, भक्ता का आप भक्तों का भय नाश करने वाले हो। अब वो देखिए सामने ब्रह्मास्त्र आ रहा है, इस दुनिया में सब लोग भय में हैं, इस दुनिया में सब लोग भय में हैं कि नहीं है, और सुरक्षा चाहते हैं, हर एक को सिक्योरिटी चाहिए कि मेरी सुरक्षा कैसे हो और मुझे भय है और उससे मैं कैसे मुक्त हूं। ये संसार सारा इस दो चीजों के ऊपर बना हुआ है, मुझे भय है और मैं कैसे बचूं। क्योंकि मुझे भय है इसलिए मैं चाहता हूं घर होगा तो कोई मेरे को मार के नहीं जाएगा, कोई कमाने वाले होगा तो मेरे को भूख नहीं मरना पड़ेगा, कुछ पैसा होगा तो बीमार होगा तो बच जाऊंगा, कोई दोस्त होगा तो मेरी, ये सब काय के लिए कि हमारा भय वो हमारे पीछे लगा हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारी कोई सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाए। और अर्जुन बड़ा बुद्धिमान था, कहे भक्तानाम अभयंकर, भक्तों को अभयदान देने वाले भगवान मेरी रक्षा करो। अब भगवान श्री कृष्ण भागवत में पहली बार बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो कोई वेद पाठ नहीं पढ़ा रहे अर्जुन को, बोले जल्दी कर तुम अपना ब्रह्मास्त्र को रवाना करो, मतलब एक्शन काम करो, बैठो मत, ऐसे नहीं कहा भगवान तुम सो जाओ मैं जाता हूं उसको, नहीं कुछ नहीं कहा, बोलते जल्दी कर उठो तुम अपना ब्रह्मास्त्र रवाना करो। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र, यहां से दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में मिले, अर्जुन की रक्षा हो गई, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, भगवान कहते इसको मारो, अर्जुन मार नहीं रहा था, नहीं मारा अर्जुन ने, बांध के लेके आया और द्रौपदी के आगे फेंक दिया, बोला ये देखो अश्वत्थामा, और द्रौपदी अश्वत्थामा को बांधा हुआ देखकर बोले इसको खोलो, इसको खोलो, खोलो छोड़ो इसको, अपने गुरु का पुत्र है, जिसके पांच बच्चे मर गए थे, जो कह रही थी अश्वत्थामा को मारना है, उसको देखकर द्रौपदी का हृदय द्रवित हो गया, बोला इसको छोड़ो ये गुरु का पुत्र है, इसको न मत मारो, अरे जैसे मैं अपने बच्चों के दुख में रो रही हूं इसकी मां कृपी ऐसे रोएगी, मैं दूसरे को वैसा दुख नहीं देना चाहती हूं जैसा मैं दुख भोग रही हूं। इसको महानता कहते हैं। भगवान द्रौपदी की रक्षा क्यों करने आए थे? इसलिए कि उसका हृदय इतना द्रवित होता था कि दूसरे का दुख नहीं देख सकती थी। जो दूसरे के दुख में दुखी होता है, अपने से समान दूसरे के दुख को जानता है। ये एक श्लोक है भगवत गीता का, आत्मोपमेयेन सर्वत्र, आत्मोपमेयेन, अपने आप से उपमा देकर कंपेयर करके दूसरे के दुख और सुख को देखो। जो मुझे दुख दे रहा है वो दूसरे को भी दुख देगा, जो मुझे सुख है वो दूसरे को सुख है। ये स्थिति जिसकी होती है वो बहुत बड़ा योगी होता है, वो बड़ा महात्मा होता है। तो अश्वत्थामा को ऐसे पकड़ के लाया, अश्वत्थामा को द्रुपद ने कहा छोड़ दो, महाराज युधिष्ठिर ने कहा छोड़ दो, नकुल ने कहा छोड़ दो, भीम बोले इसको मारना पड़ेगा, नहीं छोड़ूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा दोनों को, वो जो द्रौपदी कहती है वो भी करो, जो भीम कहता है वो भी करो, अर्जुन तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करो, मतलब मारो भी और ब्राह्मण को मारना भी ठीक नहीं है, दोनों उल्टे बातें। अर्जुन समझ गया क्या कह रहे हैं कृष्ण, एकदम बाल काट दिए, और यहां एक मणि लगी हुई थी उसकी अश्वत्थामा की, जो मणि बहुत शक्तिशाली थी, निकाल दी, अश्वत्थामा को बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा जाते हुए कहा कि नहीं अभी तो इनसे बदला लेना है, पांच पांडवों की तरफ ब्रह्मास्त्र, और एक उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु पुत्र था उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र एक साथ छोड़े दोनों तरफ, और भगवान रथ के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। इतने बीच में उत्तरा अंदर से विधवा सफेद कपड़े पहने हुए कहती आई, कृष्ण पाही माम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, हे महायोगी कृष्ण। क्या बात है, कोई स्त्री बाहर निकलती नहीं, ये बाहर कहां से आ गई और वो भी विधवा, तो कोई चीज मेरे उदर में तेज ऐसा आ रहा है जो, मैं तो मर जाऊं मुझे परवाह नहीं है, तो मैं तो पहले ही सती हो गई होती, लेकिन ये पांडवों का वंश है इसकी रक्षा करो। भगवान एकदम देखा पांडवों की तरफ भी तो ब्रह्मास्त्र जा रहे हैं अपना सुदर्शन चक्र को पांडवों की रक्षा के लिए, और स्वयं परमात्मा अपनी अंतरंग शक्ति के साथ अंदर प्रवेश किया उत्तरा के गर्भ में, और इतना तेजी से गदा को हिलाने लगे, लग रहा है कि चक्कर घूम रहा है। और उस छोटे बालक की, जो उसका जन्म भी नहीं हुआ था, उसकी रक्षा की परीक्षित की। और परीक्षित ने देखा, परीक्षित का अर्थ होता है, इक्ष कहते हैं आंख को, जिसको देखे उसको ऐसे देखता रहे, पहचानने का प्रयास कर रहा था। तो मालूम है जब भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करे, प्रवेश किया और जाकर उस परीक्षित की रक्षा की, तो परीक्षित ने भगवान का दर्शन किया। अंगूठे जितना भगवान का स्वरूप था, चार हाथ थे, सांवला रंग था, पीतांबर पहना हुआ था। अब जब जन्म हो गया परीक्षित का, तो जो भी आता उसको देखता और फिर ऐसे कहता, ये नहीं है, ये नहीं है। तो एक दिन राजसूय यज्ञ कर रहा था महाराज, अश्वमेध यज्ञ कर रहा था महाराज युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण आके बैठे हुए थे वहां। वो जो दासी थी वो छोटे परीक्षित को लेके आई, परीक्षित बैठा हुआ था युधिष्ठिर की गोद में, नीचे उतरा तो ये नीचे कैसे उतरा, और ऐसे चलने लगा और जाके कृष्ण जहां बैठे थे वहां खड़ा हो गया, मुस्कुराता है, ये वही है। लेकिन ऐसे करके फिर देखते हैं, तो व्यास देव बैठा था, उसने भगवान श्री कृष्ण को कहा, इसने आपको चतुर्भुज रूप में देखा है, आपको पहचान तो रहा है लेकिन आपकी दो भुजाएं इसको कम दिख रही हैं। तब भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया परीक्षित ने, उसके बाद किसी और को देखा नहीं, बोला हो गया, मैंने पहचान लिया जिसने मेरे को रक्षा की थी, यही था। तो परीक्षित की रक्षा की भगवान ने, तो एक समय में, एक ही समय में वही भगवान सामने खड़ा है, एक तरफ पांडवों की रक्षा कर रहा है, एक तरफ उत्तरा के गर्भ में अंदर रक्षा कर रहा है। इन दोनों की रक्षा क्यों कर रहा है? क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। जब और कोई नहीं रक्षा कर सकता है, तब भगवान रक्षा करते हैं। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, उनकी रक्षा के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। भगवान काम पहले क्या किया कि पूरे महाभारत में काम क्या किया, भगवान ने सेवा किया अर्जुन के रथ को हांकने की। तो भगवान से भक्तों की सेवा के लिए लालायित रहते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, ये प्रश्न अभी है कि हमको क्या करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने सबके लिए एक आदेश दे दिया है, क्या आदेश दिया है, भाव मद भक्त, मेरे भक्त बनो, मन मना भाव मद भक्त मद याजी माम नमस्कार, मेरे भक्त बनो। और कृष्ण ने कह दिया मेरे भक्त बनो, और कह दिया भूय एव महाबाहो, दोबारा मेरी बात सुनो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद दोबारा उसी बात को सुनाने के लिए और भक्त बनाने के लिए, अब एक बात, अब थक गए हैं, भूख लग गई है, हरे कृष्ण, पक्की बात, जिनको लगी है वो हाथ ऊपर करो, हरे कृष्ण। हमने एक शब्द कहा, आपने सुना, भक्त बनाने के लिए, भक्त बनाने के लिए, भूय है दोबारा, भगवान श्री कृष्ण ने यह संकल्प किया कि मुझे अब भक्त बनाने हैं जाकर, क्योंकि मेरे भक्त जब बनेंगे, क्योंकि मैं आदेश देके आया हूं भगवत गीता में, मेरा भक्त बनो, लेकिन उनको भक्त कैसे बने, कैसे बनेंगे उनको पता ही नहीं भक्त कैसे बने। लेकिन भक्त बनाने का मतलब क्या है, भक्ति देना ना, भक्त बनाने का क्या अर्थ है कि भक्ति करोगे तब भक्त बनोगे ना। अब भक्ति करोगे का मतलब है कि जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम हो वो भक्त है। भक्ति शब्द के अंदर छुपा हुआ है प्रेम, भक्ति बाहर का खोल है, उसके अंदर जो मसाला है वो प्रेम है, भक्ति का मतलब ही प्रेम होता है। तो भगवान का भक्त बनने का मतलब कृष्ण से प्रेम करना। अब कृष्ण अकेला यहां आए और आपको कहे कि मुझसे प्रेम करो, आप कहेंगे तुमसे कैसे प्रेम करें, तुम्हारे अंदर कहां प्रेम, तो प्रेम करने वाला कृष्ण का अपने साथ कृष्ण ने ले लिया। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे मुझे भक्त बनाना है, सबको अपना प्रेम देना है, ताकि मुझसे प्रेम करेंगे तब मेरे भक्त बनेंगे ना। फिर क्या, हाँ मुझसे प्रेम करेंगे तो इसका मतलब मैं मेरा प्रेम मेरे साथ लेके जाऊं ना। तब ढूंढा कि मेरा प्रेम है कहां। प्रेम तो भक्तों के हृदय में होता है, कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्तों के हृदय में होता है। भगवान बोला मैं जा रहा हूं खुद अपने भक्तों को भक्त बनाने के लिए, कृष्ण प्रेम देने के लिए, तो मेरे साथ तो परिपूर्ण प्रेम होना चाहिए ना। तो भगवान परिपूर्ण सबके, भगवान ने एक एक यंत्र बनाया, जैसे आपके होता ना दूध को नापने के लिए पानी कितना है, कौन सा एक होता है क्या कहते हैं उसको, लैक्टोमीटर, पानी ना कितना परसेंटेज पानी है दूध में, है ना। अब तो नया औजार बना दिए कि पानी में कितना दूध है देखना पड़ता है। तो भगवान ने एक यंत्र बनाया, सबकी दिल के पास ऐसे खड़ा किया, उसके अंदर आया 10% प्रेम, दूसरे को 15%, 8%, 12%, वो मशीन लगा के सबको देखा प्रेम 25, 30, 40, 50, 60, 90% से ऊपर किसी के पास नहीं। भगवान तो ओम पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्ण मुदच्यते, भगवान परिपूर्ण है, 90% प्राण लेके कैसे आए, उसको तो 100% प्रेम चाहिए। तब अचानक ऐसे भगवान ने वो औजार राधिका के पास लगाया तो 101%, 101% प्रेम राधिका, कृष्ण प्रेम 101%। क्या बात है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथ राधिका को जोड़ लिया, कृष्ण प्लस भक्ति नैपुण्य, मतलब 101% भक्ति कृष्ण में जोड़ देंगे जो राधिका है, तब वो बन गए गौरंग महाप्रभु। गौर अंग महाप्रभु, जिसका अंग गौरा है, क्योंकि राधा रानी है, राधा रानी का अंग गौरा है, और देनी क्या थी, भक्ति देनी थी, तो उस जो चीज देनी है उसको बाहर रखना है, तो देना क्या था, भक्ति देनी थी, प्रेम देना था कृष्ण, तो कृष्ण प्रेम तो राधिका के पास है, वो बाहर गौरा अंग को बाहर रखा। तो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौरंग महाप्रभु के रूप में आकर कृष्ण भक्त बनाने के लिए कृष्ण प्रेम दिया। बोला कृष्ण प्रेम कैसे दिया, तो वो चीज जो कृष्ण प्रेम देने वाली है, राधिका को जब साथ लाए तो राधिका के साथ वो चीज भी आई गोलोक से, जो दवाई कृष्ण प्रेम प्रकट करती है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गौलोकेर प्रेम धन, जो भगवान गौलोक में प्रेम धन है, चैतन्य महाप्रभु के विषय में एक श्लोक लिखा हुआ है, चिराद अधितम, चिराद शब्द का अर्थ समझे, चिराद मतलब चिरकाल से, बहुत समय से, अधितम नहीं दिया गया, चिराद अधितम क्या नहीं दिया गया, निज गुप्त वित्तम, निज मतलब अपना, गुप्त मतलब छुपा हुआ, वित्तम मतलब धन, क्या निज गुप्त वित्तम क्या है, अपना स्वयं का धन क्या है, बोला स्वप्रेम कृष्ण प्रेम। बोला कैसा कृष्ण प्रेम कैसा, बोला नाम अमृतम, नाम अमृत, भगवत नाम रूपी अमृत। और तब ये महाप्रभु लाए अपने साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण मंत्र राधार तंत्र, ये जो तंत्र करते हैं ना, तंत्र तंत्र मंत्र जंतर होते हैं ना, किसी को अपने वश में करने के लिए, राधिका के पास ये तंत्र है जिससे कृष्ण को वश में करती है, तो ये मंत्र वो है, यहां का नहीं है दुनिया का, राधिका गोलोक से लाई, ये गोलोक से आया। तो चैतन्य महाप्रभु इस मंत्र को लाए और पूरे भारत में भ्रमण करके स्वयं ये मंत्र कीर्तन किया और लोगों को भक्त बनाया। और उस चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को कैसे लाया, वहां से भगवान ये कृष्ण कृष्ण प्रेम राधिका के हृदय से उसको साथ लेकर ये धन वहां का चुरा के यहां लाए। कैसे लाए? चुरा के लाए, क्योंकि कृष्ण बहुत बड़ा प्रसिद्ध क्या है? माखन चोर, बहुत बड़ा प्रसिद्ध है। चोर के नाम से प्रसिद्ध है ना, माखन चोर के नाम से। आपके घर में कभी आया माखन खाने की चोरी? कभी आपकी फ्रिज में गया कभी मक्खन निकाला? क्यों? वो पुराना अमूल का 10 महीना पहले बना हुआ मक्खन थोड़ी कृष्ण खाता है। अरे रो, जिसको माखन बनाना आएगा वो तब खाएगा ना। आप लोगों में कितनों को माखन बनाता आते हैं? माता जी माखन कैसे बनाते हैं मालूम है? कैसे बनता है माखन? दूध को गर्म करना पड़ेगा, उबलेगा दूध, फिर ठंडा करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जामुन डालना पड़ेगा, फिर सारी रात रखना पड़ेगा, सुबह दही जम जाएगा, फिर उसको मंथना पड़ेगा, तब ऊपर मक्खन आएगा। ऐसे जिसके जीवन में थोड़ा दूध के उबालने की तरह तपस्या होगी, 1 घंटा बैठ के भगवान की कथा सुनने के लिए थोड़ा तपस्या करेगा, उबलेगा थोड़ा, ये उबलना है, तपस्या होगी, और उसके बाद जामुन डलेगा तो परिवर्तन हो जाएगा दूध दही में। किसी सदगुरु के शरण में बैठकर नाम रूपी जीवन में जामुन डालना पड़ेगा तो दही बन जाएगा, ठहरा हो जाएगा, फिर गिरेगा नहीं, हिलेगा नहीं, फिर पक्का हो जाएगा, और फिर नाम स्मरण रूपी मंथन करना पड़ेगा तब मक्खन बनेगा, तो कन्हैया उसको चुराएगा। ऐसा मक्खन हमारे घर में तो है नहीं, हमारा वाला मक्खन तो पुराना सा डब्बे वाला साल्टिस मक्खन, मिश्री खाता और या नमक मक्खन है, सब साल्टिस मक्खन है। एक बार हमको हलवा बनाने का शौक हुआ, हमने उसको बटर डाला, बहुत सारा बटर का अचार, पता लगा कि हलवे में चीनी के साथ नमक वाला बटर था, तो खाए तो नमकीन हलवा हो गया। ऐसा बटर कहाँ खाएगा? कृष्ण ही नहीं खाते। तो उन भक्तों के हृदय को चुराता है जो मक्खन जैसा कोमल हो जाता है भगवान के नाम सुमरण के द्वारा तपस्या। और तो चैतन्य महाप्रभु ने जब कृष्ण प्रेम देने के लिए यहां आए, चुरा के वहां से लाए, तो चुरा चोरी का माल तो छुपे हुए रखा होता, इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब ये हरे कृष्ण कीर्तन करते थे ना, तब श्रीवास आंगन में दरवाजा बंद करके करते थे, किसी को अंदर नहीं आने देते थे, कि चोरी का माल था ना, बाजार में नहीं बेचा जा सकता है, चोरी का माल छुप के आनंद लिया जाता है उसका। लेकिन फिर उन्होंने एजेंट ढूंढे, होलसेल एजेंट, 6 गोस्वामियों को, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इनको सोल एजेंसी दी कृष्ण प्रेम बांटने की। बोले यहां से चलो। कहां जाके दिया? एक को दिया प्रयागराज में और एक को दिया वाराणसी में आकर, उस जगह पे जहां मचोरी का माल, उसने दूसरी जगह पे जाके बिक्री करना, और वहां से उनको कहा यहां से भागो, अब जाओ वृंदावन में और वहां से इसको रीपैक करो। तो गोस्वामी ने रीपैक किया कृष्ण प्रेम के इस भक्ति को, और फिर पूरी दुनिया में खुलेआम जाके सबको दो। जब गोस्वामी ने रीपैक किया तब इसकी सोल एजेंसी बाद में प्रभुपाद जी महाराज के पास आई। रीबोन। तो ये कृष्ण प्रेम जो भगवत गीता का सार है, माम एकम शरणम वर्ज, मेरा शरण लो, मैं आपकी रक्षा करूंगा, मेरे भक्त बनो, ये काम स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधिका के साथ आकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में किया, और गोस्वामी के द्वारा ये चीज यहां छोड़ के गए हैं, जो श्री प्रभुपाद ने हमको और आप सबको देने का ये कार्य पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के रूप में स्थापित किया, शुद्ध कृष्ण प्रेम देने का, जो स्वयं कृष्ण भगवान देना चाह रहे थे, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। तो हमको करना क्या है? भक्त बनना है, और भक्त बनने के लिए हरे कृष्ण मंत्र को जपना है। लेकिन जपना कहां और कैसे है? जहां शुद्ध भक्त हो उनके संग में बैठकर जपना। तो प्रभुपाद एक ऐसा आंदोलन विश्व में कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति का स्थापित किया है भगवान श्री कृष्ण के शिक्षाओं के अनुसार, और आप सबको निमंत्रण है कि आप इसमें भाग लीजिए, अपना जन्म सफल कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा
हरे हरे
हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं और आपसे प्रेम चाहते हैं, तो कृष्ण से प्रेम करने के लिए कृष्ण भक्तों के संग में बैठकर हरे कृष्ण मंत्र को जपिए और अपना जन्म सफल कीजिए। समय तो हो गया है, किसी का कोई प्रश्न? 5-7 मिनट में किसी का कोई प्रश्न है या कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। वो बोलता है झोली गले के अंदर क्यों डालें? बड़ा अच्छा प्रश्न है, झोली गले के अंदर डालें, झोली गले के अंदर क्यों डालें? ये बात सुन लीजिए, सबके गले में है कि नहीं है? नहीं है ना, नहीं है, कुछ लोगों के है ना। हरे कृष्ण मत जी, प्रसाद जरूर पाइए, प्रेम से पाइए। लेडीज फर्स्ट, लेडीज का काउंटर अलग है ना, एक ही जगह पे? कोई बात नहीं। तो माता जी लोग, आप लोगों के घर आप सबको भगवान ने बहुत अच्छा मकान दिया, घर दिया है, तो घर को रोज साफ करना होता है। सबके घर में झाड़ू है कि नहीं है? कोई ऐसा घर है जिसमें झाड़ू नहीं है? वैक्यूम क्लीनर, झाड़ू है कि नहीं है? है ना, क्यों? घर साफ करना है ना, घर साफ करने के लिए झाड़ू है। ये भी घर है, शरीर घर है और इसमें भगवान रहते हैं, इसको साफ करने के लिए झाड़ू है ये। चेतो दर्पण मार जन्म, चित्रूपी दर्पण को झाड़ू लगाने के लिए भगवत नाम स्मरण करना। लेकिन झाड़ू फिर घर में रखना चाहिए ना। आप सब यहां झाड़ू थोड़ी साथ लाइए, झाड़ू साथ लाए हैं कि आप लोग? नहीं लाए ना, सबके घर में नहीं लाए। लेकिन कुछ लोग आपने देखा है उनके हाथ में हमेशा झाड़ू होता है, और वो अगर आपने हाथ से झाड़ू छोड़ दें तो आप शहर में चल भी नहीं पाएंगे। जो सफाई करने वाले झाड़ू हर वक्त अपने साथ रखते हैं ना, क्यों रखते हैं? कि शहर सफा हो तो आप सब सुखी रह सकें। तो हम ये झाड़ू गले में इसलिए डाल के घूम के, हमें अपना नहीं बाहर की सफाई भी करनी है ताकि आप लोग सब सुखी हो सको। ये हम तो वो झाड़ू गले में डाल हुआ है, हम तो चाहते हैं शहर ही सफा हो ताकि आप सुख से रह सके। प्रभु जी बोलिए। हनुमान जी पकड़ा गए, छुटकारा मत पाओ, उसकी पूंछ पकड़ लो, बोले जाएगा भगवान के पास। वो बहुत बड़ा महान भक्त है हनुमान, कोई हनुमान साधारण है, बहुत बड़ा महान भक्त है। वो आपको भक्ति देगा भगवान की, क्यों? भक्त की शरणागति पहले लेनी पड़ेगी तब भगवान की मिलेगी, परेशान क्यों हो रहे हो? अरे उसको बोलो कि जिसको आप जप रहे हो उसके पास ले जाओ। अर्जुन के रथ के ऊपर बिठाया था हनुमान को, तब अर्जुन का रथ भी जो है वो विजयी हुआ था। अर्जुन का एक नाम है, क्या नाम, क्या है पता है? क्या नाम है? नहीं, अर्जुन का अर्जुन नाम है कपिध्वज, कपिध्वज, जिसके रथ के ऊपर कपिध्वज अर्जुन को कहते हैं, जिसके रथ के ऊपर हनुमान का, हनुमान को बहुत भक्त है हनुमान, महान भगवान का भक्त है। हाँ, ये भक्त है, इसको पकड़ो। भक्त को पकड़ने में कोई परेशानी नहीं है, उसका उसको उसका संग करना बहुत अच्छा है, वो भगवान के पास ले जाएगा, उसकी चिंता मत करो। बाकी कोई देखो, ये भक्त है हनुमान, भक्त है, देवी देवता और चीज है, भक्त और चीज है। वो अगर ये अगर आपके मन में आया, इसका मतलब हनुमान आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है कि उन्होंने आपको आगे बढ़ा दिया। लेकिन छोड़ना मत उनको, उनके साथ साथ चलना, वो ठीक, वो उनको मालूम है ठीक रास्ता। हरे कृष्ण। हनुमान के लिए हम ये कहते हैं, और दूसरा कोई होता तो दूसरा उत्तर है उसका। हनुमान बहुत बड़े भक्त हैं। और कोई प्रश्न? हाँ भैया, कोई एक माइक वो दूसरा वाला होना चाहिए। हरे कृष्ण, ये आखिरी प्रश्न है, फिर प्रसाद की तैयारी हो रही है, और विशेष कोई व्यक्तिगत प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बोलो बोलो, जोर से बोलो बेटा। और द्रौपदी के विषय में प्रश्न पूछे हैं कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा क्यों कहा था, जब वो उनके बने हुए मैदानों के बने हुए महल में पानी को ऐसे देख रहा था, वो देख रहा था। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त, उसका नाम कृष्ण है, वो साधारण कोई लड़की है नहीं, वो तो अग्नि से प्रज्वलित यज्ञ से निकली है और भगवान के काम को पूर्ण कराने के लिए आई थी, और भगवान को दुर्योधन का सर्वनाश करना था, इसलिए दुर्योधन को ये अगर भगवान का भक्त न शब्द कहता तो ये सब कुछ होता नहीं जो भगवान को करना था। जो कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा था, और भगवान के भक्त ये रोल भी कभी करते हैं जो ऐसे बाहर से लगता है, जैसे अभी यहाँ ड्रामा करें कल और जन्माष्टमी का ड्रामा कर रहे हैं, तो किसी को कंस भी बनाना पड़ेगा ना, तो हम किसी भक्त, ये भक्त लाल कपड़े वाले बोलेंगे तुम कंस बन जाओ, इसका मतलब थोड़ी है कंस बन गया, थोड़ी देर के लिए कंस का ड्रामा कर रहा है। द्रौपदी ऐसे भगवान के प्लान में, जो भगवान को यहाँ दुष्ट राजाओं का नाश करना था और अपने भक्त जो पृथ्वी थी जिसको वचन दिया था वो पूरा करना था, तो इसलिए ये भक्त का एक रोल अदा किया द्रौपदी ने। असली रूप द्रौपदी का जब वो छोड़ती है दशाश्वमेध को तब नजर आता है। हरे कृष्ण, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यम वतम राजन विश्वसो न विजायते शरीरा विद्या जाला जडंद्रिया तहे काला।